उसने भी जब गए ब्रह्मा जी आए और देख करके देखा कि गुफा में भी वहां पर बच्चे जैसे के तैसे सो रहे हैं और माँ बाप भी सो रहे हैं और इधर कृष्ण के साथ में बच्चे चढ़ रहे हैं और बाल बाल उनके साथ में बुद्धि चकरा गई। एक साथ में उन्होंने देखा दो आंखें इधर, चार आंखें इधर और चार आंखें उधर, एक साथ में देखा यहाँ भी एक वहां और सब कौन है, एक तो कोई नकली तो होगा ही इसमें असली असली बछड़े और मैंने कृष्ण के बाल बाल ये कौन है और वहां पर सोए हुए हैं वो कौन है, कुछ समझ नहीं सके। जब पुलिस होकर के घर पर प्रणाम कर और नकु किनारी दिए गए थोड़ी देर के बाद में उन्होंने देखा कोई बछड़ा नहीं कुछ नहीं, शंख चक्र और गदा पर प्रहारित जितने थे बछड़े और बाली कृष्ण के साथ चतुर्भुज। थोड़ी देर के बाद में फिर से ऊपर उठाया देखा कोई नहीं
कितने भी नहीं
कृष्ण और वो बाल बालों के साथ में खेल कर लेकर फिर से उन्होंने की हाथी भी पड़े और प्रार्थना करने लगे नवमिध्यते अत्र बहुसे गणितं वराय पूजावसन्तु परिवृत्तवसन्तु भावे वर्णश्चरे कमलमित्र विशालमेनु लक्ष्मणस्य विपदे पशुपाङ्गुलः। पशु को पालन करने वाले नंद बाबा के जिनका जन्म हुआ है वो अपने चरणों में चिन्ह लेकर उनके चरणों में 19 प्रकार के चरण के चिन्ह सतस्त घूम रहे हैं, कईयों को चरा रहे हैं, सखा लोग उनका गान कर रहे हैं और ऐसा सुंदर उनका शरीर मानुष्याम पर बिजली पीतांबर पा रहा गले में मारा पटा इस तरह से देख रखे और स्तुति कर रहे हैं। कृष्ण एक सखा के हाथ कंधे पर हाथ देकर और कमल जैसे नजर हैं उनके तरफ भूख से थे, उन्होंने प्रार्थना की पदभूमि भाग का भी मत जानी मत प्रकट किया जलगोप ने भी प्रधान रजोग से हम यदि की धर्म को मिले भगवान सत्या पता लगा जिनकी चलने की धुरी थी वो ये सुखियां भी लग सकते हैं। मैं वृंदावन में कहीं एक वृंदावन की धुरी बन जाता कोई भी बन जाता कुछ भी हमारा जीवन सौभाग्य हमारा जीवन प्रभु मैंने तो ऐसी कोई तपस्या या कुछ नहीं की आयत किया है आपकी लीला में मैंने कुछ बाधा दी वृंदावन में संभवपन नहीं होगा कराने जैसे तैसे गोकुल में भी मेरा जन्म हो गया और गोकुल में भी कैसे वहां पर मैला कमाने वाली जमदारियां होती हैं जब भी मैदान इत्यादि फेंक करके दूसरों के घरों से और पैर धोने के लिए आती है अपने घर पर एक पत्थर की शिला रखती है उसको पैरों को रगड़ रगड़ करके पानी से धोती है वही वही पत्थर भी हो जाओ हमारे घर का फिर किसी क्या उसको नहीं पाई और आपसे मैं क्या मानू सब कुछ तो आपने सूचना को दे दिया जिसने माता का पेट बना करके लगाया और उसको धातु उचित करके दे दी भाई की गति को रूप दिया और बाकी रहा क्या, जो गोपियों को लगे जो अपने स्तन से दूध पिलाती हैं आपको स्नेह करती हैं, क्या हो आपकी महिला यदि कोई कहता है कि मैं जानता हूं तो बोलता है पृथ्वी की रेखी और आकाश के तारों को कोई गिनने वाला भी हो तो भी भगवान की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। कृष्ण ने कोई भी उत्तर नहीं दिया, न उनके तरफ से देखा और बोले जैसे अब आप क्या पूछिए, हमें समझ गया अतः आदेश दीजिए मैं क्या। और बच्चे जो उनके साथ से खेल रहे थे ये चौमा 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 माने चार मुख वाला, उस गांव का नाम जहां पर भी मिला हुई थी उस गांव का नाम भी चौमा है, चार मुख वाला है, उसकी दिलदारी कर देने के इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने चले गए। उस समय एक और बात थी, उस समय नहीं एक वर्ष के अंदर में भ्रष्टाचार थे जो कुछ पूजा के कारण उन्होंने घोषणा की ये वर्ष बड़ा शुभ है, इस वर्ष यदि कोई अपनी लड़की की शादी करेगा वो धन धन्य से परिपूर्ण और सब प्रकार से वृद्धि की गति को पाएगा, इसलिए उस वर्ष में जितनी भी शादियां हुई वो किसे हुई, जिसने स्वयं बने हुए थे वाल्मीकि उनके साथ के साथ, इसलिए सब गोपियों से शादी की उम्र, यहाँ तक कि जो माताएं गर्भी गर्भ में थी बच्ची तो वो उससे कहती है देखो हमारा बेटा होगा तुम्हारा बेटी हो अथवा तुम्हारी तुम्हारा बेटा होगा मेरी बेटी, तो हम लोग पति से शादी कर देते हैं, वो भी शादी हो गई ऐसा नहीं। एक लीला के साथ में भगवान बहुत तरह की लीलाएं करते हैं, इसके बाद का हेम का शंका कब हुआ, हेम हेम माने क्या होता है कर्ता, जो कृष्ण का भजन नहीं करते वह सब कर रहे हैं, शास्त्र में ऐसा था गोपुरम गोपालम जानवरों में वो कर रहे हैं, सब बाल धोते हैं चीनी के बोरे और अच्छे अच्छे कपड़े किंतु उनको कुछ ही नहीं मिलता, उनको मिलता है पुरस्कार में गधी का लगती बस और कुछ नहीं, इसलिए कहते हैं कृष्ण बलदेव बाल फल खाने के लिए गए, बाल देखा है पकने पर काला काला बन जाता है बड़ा सुगंध आता है, वहां गए और वो हिम काटू अपनी पत्नी और अपने हजार बच्चों के साथ में धन की रखवाली करता था, जो कुछ फल होता कंस महाराज के यहाँ ले जाए और कोई ब्रजवासी नहीं पाता। आज बच्चों को भूख लगी, बच्चों ने बलदेव जी से कहा, बलदेव जी गुरु हैं वो लेकर के गए और एक पेड़ को नीचे से ही हिला दिया, उसमें पके हुए फल और फिर तो एक पेड़ से दूसरा पेड़ टकरा कर सारे पेड़ फल गिर गए और इतने में धनकाशु ने बलदेव पर आक्रमण किया, बलदेव ने पिछले पैर को पकड़ करके घुमाया प्राण निकल गया और फिर तब पेड़ सारी तब से सारे जितने गधे और गधों का परिवार था हमारा कहते थे वीर और रक्ता रक्ति हो जाने से कोई भी सफा कुछ फल नहीं खाए, फिर जब वो साफ होने के बाद से तब दो चार जो बचे थे फल खाए, बल्ले भी गुरु हैं गधों को ठीक करने वाले, बल्ले भी बल्कि अधिष्ठात्री देवता भी है, इसलिए गधे की अज्ञानता को दूर कर मार कर तब भजन में लगाते हैं। हमारे अंदर में बहुत सी कामनाएं वासनाएं वह सौ में नहीं थे इसलिए गुरु इसके बाद में काव्यदाता काव्य ग्रंथ में गए पानी विषैला हो रहा उसमें गाय चलती हुई आई और उसके हवा से ही मूर्छित होकर दे दी पड़े कुछ सखा लोग भी ऐसे होते वापस वहां गए कदम उपेक्षे ऊपर में चढ़कर और छलान वृक्ष केवल एक ही बचा था जिस पर गरु की अमृत का घड़ा लेकर के कलश लेकर के बैठे थे इसलिए वो नहीं बाकी इस मूर्ति पर चढ़ करके छलांग लगा काली को दमन किया और उसको रमण कितने उसे तो मारी डालते क्योंकि उनकी पत्नियां बड़ी सुशील और भक्त थी कृष्ण की। कभी कभी देखा जाता है पति लोग पत्नियों को भजन नहीं करने देते परंतर से कष्ट देते तो ऐसे पति को कृष्ण जन्म लेकर और उनको सुधारते हैं उन्हीं की प्रार्थना से कृष्ण ने उनका जीवन दान दिया और उन सबको वहां से फेल दिया गया। इसके प्रभाव में लाख पत्नियों ने प्रार्थना इत्यादि की थी। एक समय कृष्ण मन में गोचारण कर रहे थे कोटि कोटि गाय थी मनुष्य भैंस बकरी या भैंस स्वभाव वाली गाय और एक बार अभी बच्चा हजार अभी बच्चा ने दिया वो गाय चराते चराते वो भंडीर बन गए भंडीर बन गया गाय कृष्ण तो वहीं पर बैठ करके खाने लगे बच्चों को खिलाते लगे और गाय चढ़ते 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 हरी हरी घासों को देख करके आगे बढ़ गए। हमारी इंद्रिया भी ऐसा है तरह तरह की कामनाएं होती है हमारी स्त्री सुंदर नहीं रहेगी उससे भी ये सुंदर है उससे भी वो सुंदर है उससे भी वो सुंदर है पाश्चात्य दर्शन में ऐसा है इंद्रिया बहुत ज्ञान ऐसे लोग से भगवान का भजन नहीं हो सकता तो वो कहां पहुंची कभी बनने को यहां पर तो रेखी रेख था गोकुल में और जिसने हाथी भी को जैसे सरपंच थे जब वहां पर गाय पहुंची तीव्रता से नीचे का बालू तप गया और उस प्यास से छटपटाने लगी और इतने में किसी कंस के रूप में आग लगा सदा भी कृष्ण को ना पूछ करके वो भी वही पर उस समय में बन में चारों तरफ से आग जब आग लगती है तो हवा जोर से चलती है और आग की एक फ्लेट को लेकर एक दूर से दूसरी तरफ संजावी में उसको फैला दिया और बीच में सखा और गाय जलने लगे उन्होंने कृष्ण को ध्यान हे कृष्ण हे बलदेव रक्षा कृष्ण तो दूर नहीं है घटाए बोले जैसे आंखें बंद करो आखिर उन्होंने बंद और देखा क्या रिमांडी पटके छाया में जमुना नदी के पाप कर रहे हैं, मसाला तो वैसे ही छोड़ कर देखा कि सबको बड़ा हैरान है ये कैसे हो। तो हम लोग अभी जो दुख पा रहे हैं हमारी इंडिया चल रही है, क्या कर रहे हैं विजय बाबू को तरह तरह के अगर पाप से चलने लगते हैं उसमें कोई हाथ उससे पर देव करे तो देखेगा कहां आग और कहां क्या। कृष्ण के साथ में गुरु वृंदावन में मिला ऐसी सब लीला करते हुए अप्रू जी राजलीला की राजलीलाओं का विस्तृत वर्णन है। अप्रू मथुरा गए, मथुरा से वृंदावन नंद गांव में और वहां पर कृष्ण से देखते कृष्ण को नंदा वसुदेव और देवकी का हाल पता है कितने बड़े दुखी हैं, उनके छाती के ऊपर में गाल बनता है, पैर से ठोकर मारता है, अपमान करता है तो प्राण बचे। कृष्ण बलदेव सुन करके आए बल जाती हाथी तुम्हारा और दंगल करने वाले उससे लड़ने वाले दक्षिण के प्रदेश के चार गोष्ठी को मारा और उठ करके ऊंचे सिंहासन से उसकी जो गया उसके ऊपर में कुछ गए हो गए ऐसी सब है। कृष्ण इसके बाद में गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए, 60 दिनों में 60 कलाएं 64 कलाएं पढ़ करके बदले के साथ यहाँ लौट। जब लौटे परिवासियों की याद आई, नंद बाबा और माता की याद आई, गोकुल की याद आई, छत पर चढ़कर जमुना के किनारे मनोली गए, ऊपर भी कृष्ण को खोजते खोजते ऊपर में गए। उस समय कृष्ण की ढीली बंधी हुई थी, रो नहीं पा रहे, उधर भी कहा तो मैं हाथ लेगा और तब रक्षा वृंदावन में जाओ उन्हें सांत्वना दो और उसे भी अधिक हो गया जो मेरे गृह में तड़प रहे हैं जिसका मैं ही केवल जीवन स्वरूप हूं। वो छठ पटा केवल मेरे एक संदेश के लिए मैं आऊंगा महाराज जी के बाद उद्धव जी का संदेश संक्षेप
सखा है और मंत्रणा देने वाले जो मंत्री के रूप में, इस प्रकार उद्धव जो सर्वश्रेष्ठ बुद्धि में ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए कृष्ण ने उद्धव को अपने पास बुलाकर उनका हाथ पकड़ करके कहा, गच्छो उद्धव प्रजम सौम पितृणाम प्रतिमावह, हे उद्धव हे सौम तुम ब्रज में जाओ, मेरे माता पिता को सांत्वना दिया, मेरे प्राण बल्लभा जो कि मलाज में का मेरे पीछे मन प्राण हृदय सर्वस्व समर्पण की, जो मेरे बिना किसी प्रकार जी नहीं सकती, फिर भी प्राणाम धार जंती कथंचन, बड़े कष्ट से कैसे भी प्राण धारण कर रही है, केवल एक वचन पर विश्वास करके कि आयास से इतनी दौत गई, मैं आऊंगा 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 इतना कहकर वचन दिया था, इसी कारण गोपियां बड़े कष्ट से प्राण धारण कर रही है। हे उद्धव तुम जाओ ब्रज में उन गोपियों को उस संदेश वाक्य सुना के आओ। इस प्रकार कृष्ण बार बार एक एक बातों को स्मरण करते हैं और उन बातों को सुनाते हैं। इन इन बातों को सुनाना गोपियां अवश्य मान लेंगे। इस प्रकार कृष्ण भरोसा रखते हुए उद्धव जी को वेशभूषा से सुसज्जित करके जिस रथ में ब्रजपुरी से आए थे उसी में ही बैठाया और उन्हें भेजा। उद्धव ने सोचा कि ब्रजवासियों को समझाने में क्या लगता है, दो चार बातों में ही मैं खुला दूंगा, उनको समझा दूंगा। ज्ञान की गठरी लेकर चल रहे हैं और जमुना जी कल कल धारा से हंसती हुई कह रही है, अरे उद्धव इस ज्ञान की गठरी ले जा रहे हो, वहां ब्रज में चलेगा नहीं, जहां ब्रज की झाड़ियों की कांटे में उद्धव की ज्ञान की गठरी खुल जाती है। जब उद्धव चलते हैं वहां देखते हैं, जबकि उद्धव चलते हैं तो जिस समय उद्धव चलते 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 शाम के समय नंद भवन में पहुंचे, उस समय कुछ ब्रजवासियों ने उन्हें लेकर के नंद बाबा के पास में पहुंचाए। जब उद्धव जी ने प्रणाम किया तब नंद बाबा ने उन्हें कृष्ण का संदेश वाहक दूर और उद्धव जी को जो जानते उन्हें गले लगाया और ब्रजवासियों से कहा कि उद्धव बहुत दूर से आए, उन्हें कुछ खिलाना जाओ, कुछ बना के लाओ, ब्रज की क्या स्थिति। जब से कृष्ण ब्रज छोड़कर मथुरा को गए तब से ब्रजवासियों की बड़ी दयनीय दशा है। कृष्ण के विरह में अधीर होकर नंद बाबा यशोदा माँ दीवारास्त रो रहे। यशोदा मैया तो मुंह में कपड़ा ढक करके दीवारास्त रोती है, कोई समझाने भी आवे किसी की बात नहीं सुनती, कृष्ण को देखे बिना किसी को नहीं देखे, इस तरह से अन्न जल परित्याग कर दिया और नंद भवन में रसोई के चूल्हे में आग नहीं जली, मकड़ी का जाल हो गया, घरों में धूल मिट्टी भर गया, कृष्ण जब से गए 3 महीना बीत गया। वही स्थिति है, किसी के मुंह में अन्न जल तक नहीं गया है। ब्रजगोपियां कृष्ण के विरह में अधीर हो करके जहां रथ के पीछे पीछे कुछ दूर चले थी उस उद्धव के आने में वन में पड़ी हुई है, तब से लौटी नहीं। जहां सखा लोग कृष्ण के विरह में अधीर होकर कहीं इधर उधर बिखरे हुए दिवारात्र रो रहे हैं, गाय भी घासे नहीं खाती, बछड़े दूध नहीं पीते, भौरे भी गुंजार नहीं करते, कोई मधुमक्खी आदि फूलों में बैठ करके मधुपान नहीं करती। कोयल और जो कि मोर मन ये सब नाचते नहीं, कोयल कुहू कुहू आवाज नहीं करती। ब्रजवासियों की आंखों की आंसू की धारा से जमुना प्रवाहित होती हुई मथुरा को संदेश भेजती है। कृष्ण विरह में व्याकुल है, छटपटा रहे हैं। उद्धव को भेजा सांत्वना देने को। जब उद्धव ने देखा उसकी ये स्थिति, तो उस समय बड़े विचलित है, स्तंभित है। जबकि किसी ब्रजवासी ने कुछ बिना चीनी के ही, बिना मीठा के ही खीर बना करके लिया है, उद्धव को खिलाया। खाने के पश्चात जब थोड़ी देर में बैठे, तो उस समय से नंद बाबा आ करके पास में बैठे, कुछ पूछना चाहते हैं, कृष्ण के विषय में जानना चाहते हैं। किंतु इतनी उतावली, इतना जला भराता है कि एक बार बोल भी नहीं सकते। ऐसी स्थिति में काफी देर तक रोते रहे। बड़े मुश्किल से उन्होंने पूछा कि उद्धव ये बताओ, मेरे भैया वसुदेव कुशल से तो है और देवकी आदि सभी लोग कुशल से तो है, मथुरा वासियों को और तो कोई परेशानी नहीं है। दैव से दुष्ट कंस मारा गया है, अब तो मथुरा वासियों की विपत्ति तो गई होगी, अब तो कोई परेशानी नहीं है। आप ये बताओ हमारा कन्हैया बल बलराम इतना कैसे, इतना कहते कहते उस समय जब ये स्थिति देखी, उद्धव जी तो चमत्कृत हो उठे। उनकी ज्ञान में एक भी अक्षर या एक भी बुद्धि काम ही नहीं कर रही है और सारे विचार बुद्धि लोप हो गए कि इस प्रकार बैकुल छटपटा रहे हैं। कृष्ण के लिए इतने अर्थ मैं इनको कौन से शब्दों में समझाऊं। बड़े मुश्किल से उन्होंने विचार किया, बोले कि हे नंद बाबा, आप तो बड़े सौभाग्यवान हैं। कृष्ण तो कोई साधारण बालक नहीं, वे तो परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा हैं। वे आपके पुत्र बनकर आए हैं, वे आपसे अधिक दूर नहीं, आपके हृदय में ही विराजमान हैं। आप उनको दूर नहीं देखें, वे आपके निकट में हैं। ऐसे ऐसे समझाने लगे। उस समय नंद बाबा बोले, अरे उद्धव ये तुम क्या बोल रहे हो, ये कैसी बात बताई, मुझको तुम सौभाग्यवान कहते हो। मेरे जैसे एक दुर्भागा को आज मैंने कृष्ण को पा करके खो दिया और तुम कहते हो मैं सौभाग्यवान हूँ। मैंने तो कभी कृष्ण को परब्रह्म परमेश्वर नहीं समझा, तुम कहते हो परब्रह्म परमेश्वर। गर्गाचार्य ने भी कभी ऐसी बात कही थी, नारायण सब गुण, परंतु कभी तो हमने कृष्ण को भगवान नहीं समझा, वे मेरा बालक है बालक, जबकि छोटा सा बच्चा बालक दीनार जसुदा के आगे पीछे घुमा फिरा करता था, परछाई की तरह रहता और भूख लगने पर घर में उधम मचाता, सारे बर्तन तोड़ डालता थी। जब तक मैं आ जाऊं, मेरे गोदी में नहीं बैठे, तब तक उसे चैन नहीं। पान की बिड़िया भी मुंह से निकाल करके चबा ले, भले ही वे परमेश्वर है और परब्रह्म हो चाहे कोई भी हो, वे तो मेरा पालक है। पिता होने के नाते हमारा कर्तव्य है बालक को शिक्षा देना, उपदेश देना। इसलिए हमने जो कुछ किया है वह सही किया है। यशोदा ने उसके कान वाला लठिया उठाए, उनको डांट पर लगाया, उसके कमर में रस्सी से बांधा है। उस बालक के भविष्य को देखते हुए हमने भी जीवन में जो कुछ कहा है उस बालक के भविष्य है, तो हमारा कर्तव्य तो हमने किया। परंतु अब उद्धव ये बताओ, उनके विरह में हम रहे कैसे। घर का एक एक गीत, एक एक खुल कर सभी को कृष्ण के याद कर, और बाहर कहीं भी जाऊं ब्रजभूमि के ऐसा कोई जगह नहीं, ऐसे कोई पेड़ पौधे नहीं, ऐसा कोई पहाड़ पर्वत नहीं, कोई ऐसी नदी का किनारा नहीं जहां कृष्ण ने नाच गान नहीं किया हो, खेलकूद नहीं किया, सर्वत्र गोचारण करते हुए भ्रमण किए, ब्रज के एक एक धूल का कृष्ण की यात्रा देती है। मैं उन्हें एक क्षण भी विस्मित नहीं हो पाता, क्या करूं, कैसे मैं अपने को धैर्य धरूं। बड़ी बड़ी ब्रज में विपत्तियां आई, उन सभी विपत्तियों में छोटे से बालक पुतला आए, तीना वर्त सकटासुर बसासुर अघासुर और कितने कितने दैत्य दानव आए, परंतु उन सभी विपत्तियों में हम सबकी रक्षा हुई। काली का दमन किया, गिरिराज गोवर्धन की पूजा करवाई, उन्हीं के कहने से हमने पूजा की, और देवराज इंद्र ने पानी बरसाए उन सभी की परेशानियों में, सभी कुछ परिस्थिति में उन्होंने ही सौर की रक्षा की। आज उनके विरहस्वरूपी समुद्र हम सबको निगल दिया, तो हम क्या करें, कैसे हमको अपने को धैर्य धारण करें। इसी प्रकार रात भर कृष्ण की कथा कहते कहते बड़े व्याकुल होकर अधीर होकर सुनाते रहे, उद्धव के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। ये तो नंद बाबा और यशोदा मैया की स्थिति है। जब प्रातः काल उठ करके बाहर निकले, स्नान करके गोपियों के समक्ष चले, वहां जैसे उद्धव क्यारी में पहुंचे, उस रात को देख करके गोपियां, कुछ गोपियां सामने आए, बोले ये कौन आए, वही छोड़े का रात, क्या वही काल क्रूर अक्रूर फिर से आ गया है, अब किस लिए आया, आया इसलिए कि सुना है मथुरा में कंस मारा गया है, अब उसका पिंड दान करना है, उसके पिंड दान के लिए मथुरा में कोई भी सामान नहीं मिला, अब इसलिए वही रात लौट के आया कि ब्रजगोपियों के हित पिंड लेकर के कंस का पिंड दान किया जाएगा, इसलिए वही अक्रूर आया है। सामने गोपियां आई, उद्धव जी सुनकर के चमत्कृत हो गए, ये कैसे शब्द, ऐसे प्रेम की भाषा जीवन में कभी तो हमने सुना ही नहीं, किसी साहित्य में किसी काव्य में नहीं मिला, तो अद्भुत अद्भुत प्रेम, जहां ब्रज गोपियां सामने आकर के कृष्ण का दूत समझ करके उसे कहती हैं कि हे उद्धव, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, पिता माता को सांत्वना देना है, जाओ इस रास्ते में नहीं उस रास्ते में जाओ, उनके घर में जाओ, वे लोग खुश हो जाएंगे तुम्हें देखकर, उनको तो आने की कोई आवश्यकता नहीं हुई, वे तो अब पहले ग्वाल थे, अब तो वे क्षत्रिय कुल में पहुंच गए हैं, अब तो मथुरा के राजा बन गए हैं, कि अपना सेवक सोने के रथ में घूमता है, अब वे कितने बड़े हो गए हैं, अब तो किसी से कोई नाता रिश्ता नहीं रहा, किसी से कोई जरूरत नहीं समझी, जहां कहीं जरूरत होती है तो शहर ही जाना पड़ता है, विशेष आवश्यकता होने पर जहां अतिशय घनिष्ठ संपर्क होता है वहां पर जाते हैं। पर कृष्ण को तो धन्यवाद है कि मुनेर की सुदूर सजा, जब बड़े बड़े मुनि ऋषि भी भूल नहीं पाते, अपने परिजनों को याद करते हैं, भूलते रही, फिर भी कृष्ण को धन्यवाद, जो कि उन्होंने सदा के लिए हम सबको तैयार किया, वे भूल गए, हमारा सारा संपर्क तोड़ दिया, अब किस काम के हम तो किसी काम के नहीं रहे, जिनसे बचपन से जिनके साथ हमारा सब संबंध था, हम सब ने मान प्राण हृदय सर्वस्व समर्पण कर दिया था, जिनके साथ हमारा जो कोई भी हेतु नहीं रहा, सर्वस्व दे करके उनकी सेवा करने का प्रयास किया, आज वे हमें छोड़ दिए हैं। प्रेम होता है दो प्रकार के, एक निरुपाधि प्रेम, दूसरा है सोपाधिक प्रेम। जहां उपाधि होती है, जहां कई कहीं कोई स्वार्थ होता है, कोई मतलब होता है तो वहां प्रेम दिखाते हैं। ऐसे ही मधुमक्खियों का जैसे फूलों में प्रेम होता है, एक बार मधुपान करता है फिर दोबारा कभी लौट के नहीं आता है। एक पुरुष एक नारी की तब तक सेवा करता है तब तक उनमें आकर्षित होता है जब तक उसका रूप जो उमद होता है। जब किसी प्रकार से कोई बीमार पड़ जाए, कोई विकृति आ जाए, कुछ भी हो जाए, बस उसके प्रति प्रेम नहीं रहता है। एक बार वनिता पुरुष की तब तक सेवा करती है जब तक उससे धन मिलता है, धन खत्म हो गया कोई संबंध नहीं जाओ। ऐसे गुरुकुल में छात्र तभी तक पढ़ते हैं जब तक विद्या समाप्ति नहीं होती है। विद्या समाप्ति के बाद में कभी और कोई गुरु से भेंट भी नहीं, कोई संबंध नहीं। जंगल में हिरण तब तक है जब तक जंगल में आग नहीं लगी। यदि आग लग गई फिर कभी लौट के नहीं आएगा, डर के मरे। तो ऐसे ऐसे संसार में सुपाधि प्रेम स्वार्थ का प्रेम है। परंतु ये उद्धव ये बताओ, हमने कौन सा स्वार्थ देखा? कभी तो हमने कोई स्वार्थ नहीं देखा। जब राधा जी बहुत छोटे ब्रजगोपियां छोटे छोटे, तब से कृष्ण के साथ में संबंध है, जो कि कृष्ण के साथ में खेलती है, नाचती है, कृष्ण को खिलाते पिलाती है और तब से उनकी सेवा करती है। उन ब्रजगोपियों के अंदर में कोई भी तो हेतु नहीं, तो गोपियां कहती है तो हमने कौन सा दोष किया, हमारे लिए कौन से दोष देख करके कृष्ण ने हमें त्याग दिया। उस समय ब्रज की गोपियां सब कृष्ण के किशोर और बाल्य की लीलाओं का स्मरण कर बड़े विकल होकर रोने लगी और गाने। कुछ देर बाद जब होश आया तब ब्रज गोपियां उद्धव को लेकर के चली कि उद्धव चलो हमारे स्वामी जी के पास, आज राधा जी की कैसी स्थिति है, क्या दशा है, एक बार तो देखो। उनके पास से जब ले गए, उद्धव जी वहां राधा जी को दूर से ही प्रणाम किया। प्रणाम करके आ करके जैसे ही बैठ गए, कोई एक काला भौरा जो कि कृष्ण ही भौरा बन करके वहां उपस्थित किए और गुण गुण करके उड़ता हुआ बार बार राधा जी के चरणों में बैठने को जाता है। ऐसी स्थिति में राधा जी विरहिणी उन्माद ही होकर के पड़ी हुई है, फूलों के सेज में सुला दिया फूल के साथ उनका शरीर एक बराबर हो गया है। कभी कभी गोपियां रुई ले करके देखती है श्वास चल रहा है या बंद हो गया, कभी कभी हाथ पकड़ करके पल्स देती है कि चल रहा है या नहीं। ऐसी स्थिति तो उस समय विरह में अधीर होकर उन्मादिनी होकर पड़ी हुई है। ऐसी दशा में राधा जी आंखें जहां मुदी हुई है, अंतर दशा में अंतर नेत्र से भौरे को अनुमान लगा करके वे कुछ बातें करती है, जिनकी बातें बड़े बड़े महानों के लिए भी समझना बड़ा कठिन है। तो इस प्रकार वर्णन करती है, मधुपकित बंधो मा प्रशांग सपतना कुंजति लुलित माला कुंकुम शुभे। मधुपकित बंधो मा प्रशांग सपतना, अरे मधु अरे भ्रमर, तुम तो कपट का बंधु है, तो ये तुम भी जैसे तुम्हारे बंधु कपटी हैं, वैसे तुम भी बड़ा धूर्त और कपटी हो और कपट भाव लेकर के मेरे पास आए हो मुझको मनाने के लिए, मेरे जैसे माननी को और माननी का मनाने के लिए। ऐसे ही वेशभूषा से आया जाता है क्या? ऐसे तो कोई नहीं आते हैं, तुम्हें बुद्धि तो नहीं है, बुद्धि भी मारी गई तो बुद्धि होती तो कुछ सोच समझ के आता, तो आया तो ऐसे क्यों आया? जो कि वहां मथुरा के नागरी जो फूल की माला पहनी और उसमें जो कुमकुम लगा हुआ है, उस कुमकुम को कुमकुम में लगा करके यहाँ पर आए हो, तुम्हें थोड़ा भी तनिक भी होश नहीं है, तुम्हारे चमक का भी ऐसी ही रहता है, जनसभा में जब जाते हैं तो उन्हें देख करके लोग हंसी उड़ाया करते हैं, तो ऐसी दशा तुम्हारी भी है। तुम मेरे पैर को मत छो, तुम तो भ्रमर है ना तट पर, छो पैर वाला। मनुष्यों के दो पैर होते हैं, मनुष्य बुद्धिमान होते हैं चला चतुर, और पशुओं के चार पैर होते हैं, इसलिए उनको पशु कहते हैं, जानवर कहते हैं, गाली देते हैं, पशु कहा करते हैं। परंतु उससे भी गया बिता हुआ जो कि तुम्हारा छो पैर है, तो तुम्हारी बुद्धि कहां से होगी, तुम तो पशुओं से भी गया बिता हुआ।